अगले दिन निक की आंख देर से खुली। रात भर वो ठीक से सो नहीं पाया था। उसने सोने की कोशिश की, तब भी नहीं। आखिरकार थक हार कर उसने नींद की गोली ले ली थी। आंख खुलते ही वो उठा और प्रियल से बात करने के लिए निकल गया। थोड़ी देर बाद वो जैन के कमरे में पहुंचा तो उसे प्रियल नहीं दिखी, आरोही भी वहां नहीं थी। ये देखकर उसने फोन निकाला और जीनू को कॉल किया। उसके चेहरे पर परेशानी की लकीर साफ दिख रही थी। हाँ निक, बोलो, जीनू ने फोन उठाते ही कहा। वो अपना फाइल समेटने का काम कर रही थी। ये प्रियल वापस टेनिस सेंटर आ गई है क्या? देखना वो वहां है क्या, निक ने पूछा। परेशानी में वो बार बार अपने चेहरे पर हाथ फेर रहा था। नहीं, यहां तो नहीं आई वो। मैं सुबह से यहां हूं, मुझे प्रियल नहीं दिखी यहां, टेनिस में भी नहीं दिखी मुझे, जीनू ने जवाब दिया। और आरोही? निक ने पूछा। वो भी नहीं। निक ने फोन काट दिया और मन में कहा, अब ये प्रियल कहां चली गई? उसकी परेशानी और भी बढ़ गई थी। ये कहकर वो प्रियल को दूसरी जगहों पर ढूंढने के लिए चला गया। काफी देर तक ढूंढने के बाद उसे आरोही दिखी, जो एक बेंच पर बैठकर अपनी ऑनलाइन क्लास अटेंड कर रही थी। प्रियल आरोही के पास भी नहीं थी। निक ने उसे देखकर कहा, आरोही तो यहीं है, फिर प्रियल कहाँ नहीं है? रात को उसकी तबीयत भी ठीक नहीं थी, वॉमिटिंग भी हो रही थी, कहीं उसकी तबीयत और खराब तो नहीं हो गई होगी। एक काम करता हूँ, हॉस्पिटल में जाकर देखता हूँ, वो वहीं होगी। प्रियल को कहीं भी ना पाकर उसकी परेशानी सातवें आसमान तक पहुंच गई। कहाँ वो कल प्रियल को खुद से दूर रहने के लिए कह रहा था, कहाँ अब उससे एक पल भी दूर नहीं रहा जा रहा था। निक ये कहकर हॉस्पिटल की ओर चला गया। उसने पूरे हॉस्पिटल में प्रियल को ढूंढा, पर उसे प्रियल कहीं नहीं मिली। आखिर में निक जैन के रूम में गया, लेकिन वहां पर भी सिर्फ जैन और आलिया ही थे, प्रियल वहां भी नहीं थी। वो उसे हर एक जगह पर ढूंढ चुका था। जैन ने निक को परेशान देखकर पूछा, क्या हुआ भाई, किसे ढूंढ रहे हो आप? उसे निक के चेहरे पर साफ परेशानी दिख रही थी। आलिया ने मुस्कुराते हुए कहा, प्रियल यहां पर नहीं है सर। वो समझ गई थी निक की इस परेशानी के पीछे वजह क्या है। जैन आलिया को हैरानी से देखने लगा। पर आलिया, तुम्हें कैसे पता भाई प्रियल को ढूंढ रहे हैं? जैन ये प्रिडिक्ट नहीं कर पाया था। आलिया थोड़ी इंटेलिजेंट थी इस मामले में, तो उसने प्रिडिक्ट कर लिया था। आलिया, मुझे प्रियल कहीं नहीं मिल रही, तुमने देखा उसे कहीं पर, या तुम्हें कोई आइडिया है वो कहां पर हो सकती है? निक ने आलिया से पूछा। आलिया ने उसकी हालत समझ ली थी, तो उसे लगा उसे प्रियल के बारे में पता होगा। आलिया ने कहा, नहीं, आपको ही ढूंढना पड़ेगा। आलिया कहने के बाद मुस्कुराने लगी। फिर उसने धीरे से गाना गुनगुनाया, मैं यहां तुम कहां। निक ने अफसोस में सिर हिलाया और वापस प्रियल को ढूंढने चला गया। उसकी हालत किसी ऐसे आदमी की तरह हो गई थी जो किसी अनजान शहर में अपना सब कुछ खो चुका था। उसे खुद पर गुस्सा भी आ रहा था, मगर फिलहाल के लिए वो अपने गुस्से और अपने दूसरे भावों को छिपा रहा था। अभी तो उसे सिर्फ और सिर्फ प्रियल को ढूंढना था। जैन निक के जाने के बाद आलिया से बोला, यार तुम इतनी स्ट्रेट फॉरवर्ड कैसे हो सकती हो कि डायरेक्ट बोल दिया कि प्रियल यहां पर नहीं है? जैन आलिया की इस बात से इम्प्रेस भी हुआ था और उसे गुस्सा भी आ रहा था, क्योंकि जब उसने कहा था कि आपको प्रियल को ढूंढ रहे हो, तब निक के चेहरे के हाल काफी अजीब से हो गए थे। वो काफी गंभीर तरीके से परेशान दिखने लगा था। आलिया ने कहा, बस देख लो ऐसी ही हूं मैं, मुझे बात घुमा फिरा कर नहीं करनी आती, और ना ही मुझे गोल गोल जलेबी की तरह बात घुमाना पसंद है। आलिया ने सीधे शब्दों में कहा। जलेबी? जैन को अब की बार उसका सीधे सीधे बात करने वाला अंदाज अच्छा लगा, मगर वो जलेबी वाले शब्द से हैरान था। हाँ, कभी जलेबी नहीं खाई क्या? चलना कभी हमारे लखनऊ, पूरा लखनऊ घुमाएंगे तुम्हें और बहुत सारी जलेबियां भी खिलाएंगे, आलिया ने लखनवी अंदाज में कहा। तुम लेकर जाओगी मुझे अपने साथ? जैन ने फिर से पूछा। आलिया ने कहा, हाँ, लेकिन अगर छुट्टियों में तुम अपने घर नहीं जाओगे तो जरूर लेकर चलूंगी हम, उसने दोबारा लखनवी अंदाज दिखाया। जैन हंसने लगा। ओ, फर्स्ट ईयर स्टूडेंट, यहाँ सिर्फ 15 दिनों की छुट्टियां होती हैं। वो आलिया की बातों में खोने लगा था। क्या सिर्फ 15 दिन? इतने में क्या होगा? आलिया ने बच्चे जैसा मुंह बनाया। उतने में यही होता है कि आप अपनी नेक्स्ट ईयर के लिए प्रेपरेशन कर लो, और घर वालों से किसी को मिलना है तो 2 दिन के लिए मिलकर आ जाओ, जैन बोला और ऊपर की ओर उठकर खुद को सही किया। वो लगातार आलिया के चेहरे की तरफ देख रहा था और उसकी बातों को खास अटेंशन दे रहा था। तुम्हें क्या लगता है जैन, निक सर प्रियल को लाइक करते हैं या नहीं? आलिया काफी समय से इस बारे में पूछने का सोच रही थी, आखिरकार उसने पूछ ही लिया। उसे एक और प्रियल की जुगलबंदी काफी भा रही थी। लाइक नहीं, लव करते हैं, बस एल, जैन ने मेन बात बता दी, मगर एली के नाम पर आकर वो खामोश हो गया। क्या एल? आलिया ने पूछने की कोशिश की। जैन ने अपने चेहरे के अंदाज को नहीं बदला था, तो उसे सब नॉर्मल लगा। अरे एल नहीं, अरे वो थोड़ा शर्मीला है ना, इसलिए अपनी फीलिंग एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, जैन ने बात को घुमा दिया। उसने पूरी बात का फोकस बदलकर एली से हटा दिया। आलिया मुस्कुराई और इस बात पर कुछ नहीं बोली। प्रियल पिछले काफी देर से एक ऑनलाइन क्लास में थी, क्लास लाइब्रेरी में लगी हुई थी और ये सभी के लिए अवेलेबल थी। वो सुबह से ही निक से बचने की कोशिश कर रही थी। उसने एक तरह का प्रण ले रखा था कि चाहे कुछ भी हो जाए वो निक के सामने नहीं आएगी। नहीं आएगी मतलब नहीं आएगी। प्रियल क्लास से बाहर निकली। चलो चुपके से निकल जाती हूँ वरना कहीं वो मेरे पीछे ना आ जाए। वो निक से बचने की कोशिश कर रही थी इसलिए तुरंत भागकर क्लास से निकली। निक ने मन में कहा कब तक छुपोगी मैं शर्मा। वो एक गलियारे में था और हर एक कमरे की जांच कर रहा था। वहीं प्रियल मन में बोली जब तक आप ढूंढ ना ले। आपने प्रियल का डर देखा है कैप्टन निक, अब गुस्सा दिखाइए। कुछ ज्यादा ही फिल्मी हो गया, पर मैं आपके सामने आ ही जाऊं तो नाम बदल देना मेरा। उसने पूरी बात कहकर मुंह बनाया और नाक से कोड़ा। नाराज और गुस्सा होने पर लड़कियां सबसे पहले ये काम करती हैं। नाम तो अब मेरा बदला जाएगा। वहीं निक ने एक कमरे की तलाशी लेते हुए कहा ये लड़की पता नहीं कौन से कोने पर छुपकर बैठी है। शाम हो गई थी मगर निक को अभी भी प्रियल नहीं मिली थी। वो इंस्टीट्यूट की हर एक जगह देख चुका था, पार्क से लेकर ग्राउंड तक। निक ने कहा शाम हो गई है और अभी तक नहीं दिखी यार। सब मीटिंग और क्लासेस भी कैंसिल कर दी मैंने उसके लिए और मैडम है कि अपनी जिद पर अड़ी हैं। उसे ये बात क्लियर हो गई थी कि प्रियल कहीं छुपी है और वो जानबूझकर उसके सामने नहीं आ रही, क्योंकि अगर वो छुपी ना होती तो कहीं ना कहीं दिखी जाती। तभी निक को जीनू दिखाई दी, वो उसी की ओर आ रही थी। टेनिस सेंटर का काम निपटाने के बाद वो शाम कुछ कागजी काम करने के लिए इंस्टीट्यूट आई थी। निक ने जीनू को कहा जीनू इधर आ। वो जीनू को शक की निगाहों से देखने लगा था। जीनू उसके पास आकर बोली वो लकड़ू। उसे असली बात के बारे में नहीं पता था। निक ने कहा सच सच बता प्रियल को देखा तूने। उसके बोलने में धमकी और रिक्वेस्ट दोनों के भाव एक साथ दिखे। नहीं तो तुम क्यों पूछ रहे हो बार बार उसके बारे में, तूने तो कहा था ना मुझे वो यहाँ नहीं चाहिए। उसे नहीं पता था निक को प्रियल सुबह से नहीं मिली, इसलिए उसने सभी चीजों को नॉर्मल समझकर एक तरह का मजाक उड़ाया। मैं अब कह रहा हूँ मुझे वो चाहिए, जा ला के दे, निक ने बच्चे जैसा रिएक्ट किया। निक तुम बिल्कुल नहीं बदले यार, बचपन में भी ऐसे ही करते थे। जीनू को ये देखकर हंसी आ गई।
और तुम भी बिल्कुल नहीं बदली, सुनती हो किसी की? पता नहीं मेरे भाई जैसे दोस्त का क्या होगा तुझसे शादी करके। सुनना प्रियल को ढूंढ दे, मुझे उसे सॉरी बोलना है। निक कुछ बात कहने के बाद वापस रिक्वेस्ट वाले अंदाज में आ गया। इतने मूड स्विंग्स तो प्रेग्नेंट लेडी के भी नहीं होते। जीनू अपनी फाइलों को संभालने लगी। प्लीज ढूंढ दो, तुझे नहीं पता लेकिन मेरे पास सिर्फ आज का दिन फ्री है और फिर कल की लीव ली है। आज तो मैंने उसे ढूंढने के लिए सारी मीटिंग और क्लासेस छोड़ दी। आज वो मिल जाए तो कल का पूरा दिन उसके साथ बिताऊंगा। फिर तो पता है दो दिन का काम एक साथ करना पड़ेगा, जानती हो ना तुम कितना प्रेशर है, और मैं नहीं चाहता मेरा कल का दिन भी उसे ढूंढने में वेस्ट हो जाए। निक ने खुद को थोड़ा सा सही करते हुए कहा। ओके देखती हूँ मैं, जीनू ने कहा और हंस दी। वो उसकी मदद के लिए तैयार हो गई थी क्योंकि निक जो बचपना दिखा रहा था वो उसे काफ़ी दिनों बाद देखने को मिला था। काफ़ी दिनों नहीं, बिल्कुल काफ़ी महीनों के बाद। तभी प्रियल ने निक और जीनू को एक साथ देखा। वो उन्हें देखते ही पहले तो एक जगह पर छुप गई, फिर उसने कुछ गहरी सांसें ली। इसके बाद उसने उन्हें दोबारा देखा और अपनी एक गहरी सांस को रोक लिया। प्रियल उन्हें देखकर बोली अब तो लगता है जीनू भी निक के साथ मिल गई है, अब तो जीनू से भी छुपना पड़ेगा। उसने जो गहरी सांस ले रखी थी उसे बाहर की ओर छोड़ दिया। निक ने मन में प्रियल से कहा मिल भी जाओ अब यार प्रियल, एक काम करता हूँ उसके रूम में जाकर छुप जाता हूँ, वहां तो आएगी ही, अब कहाँ जाओगी मिस शर्मा। उसने ये आइडिया खुद से ही सोचा था। फिर वो फटाफट उस कमरे की ओर निकल गया जो यहाँ इंस्टीट्यूट में कुछ दिन उसे रहने के लिए मिला था। वहीं प्रियल ने मन में कहा एक काम करती हूँ, आज रात को आलिया और जैन के पास रुक जाती हूँ, उन दोनों का भी टाइम पास हो जाएगा, बेचारे दोनों हॉस्पिटल में बोर हो रहे होंगे। पहले आरोही को फ़ोन करके सब कुछ बता देती हूँ ताकि रात को मेरा वेट ना करें, या फिर ऐसा करती हूँ ना उसे ही बुला लेती हूँ, वो भी आ जाएगी हॉस्पिटल में, चारों मिलकर मस्ती कर लेंगे। प्रियल ने भी अपनी तरफ से प्लान बनाया। प्रियल ने प्लान बनाने के बाद आरोही को कॉल किया। उसके फ़ोन उठाते ही प्रियल बोली हेलो आरू, क्या कर रही है तू? वो गलियारे में आलिया और जैन के हॉस्पिटल वाले रूम की ओर चलने लगी थी। आरोही ने सामने से कहा मैं तो कुछ नहीं कर रही, क्यों? उसकी आवाज़ बैठी हुई थी और वो ऐसे बोल रही थी जैसे दबाव में बोल रही हो। प्रियल बोली अच्छा सुन, एक काम करना, हॉस्पिटल में आ जा, रात को वहीं पर रुक लेंगे आलिया और जैन के साथ। प्रियल इस बात को भांप नहीं पाई थी। ये बोलकर प्रियल ने फ़ोन काट दिया। वहीं आरोही ने कहा देखिए सर, ये गलत बात है, आप मेरा फ़ोन छीनकर ऐसे हमारी बात नहीं सुन सकते। आरोही के ठीक सामने निक खड़ा था, उसके दोनों हाथ उसके कमर पर थे। वो प्रियल के कमरे की ओर जा रहा था तो उसे आरोही बीच में दिख गई थी। वो उसके पास प्रियल का पूछने का सोचकर चल पड़ा था, मगर वो उसके पास आया तो आरोही को प्रियल का कॉल आ गया था। निक ने कहा एवरीथिंग इज़ फेयर इन लव एंड वॉर, उसने किसी हीरो की तरह एक्टिंग करने वाला रिएक्ट किया। आरोही हैरानी से बोली लव? निक ने तुरंत अपनी बात बदली और कहा नहीं वॉर, और आरोही, अगर तुमने प्रियल को इस बारे में बताया तो फिर मुझे मत बोलना मेरे फिजिकल एक्टिविटी में मार्क्स कम कैसे आए। और तुम यहाँ आ जा रही हो तो वो भी मेरी परमिशन की वजह से आ जा रही हो। अब जाना तो तुम्हें प्रियल से मिलना था, मगर अब तुम अपार्टमेंट में घूम लो क्योंकि प्रियल को मुझसे मिलना होगा। ये कहकर निक चला गया, जबकि आरोही देखती रह गई। वो उसके जाने के बाद बोली, अब तो भगवान ही बचाई बेचारी प्रियल को। निक ने मन में कहा, अब कहाँ जाएंगी मिस शर्मा, मैं भी देखता हूँ आज आपको मुझसे कौन बचाता है। पूरे दिन से छुपती फिर रही है ये लड़की, लगता है इस बार बहुत मेहनत करनी पड़ेगी इसे मनाने के लिए। निक खुश भी हो रहा था तो आगे की जाने वाली मेहनत को सोचकर थोड़ा परेशान भी। हालांकि ये परेशानी अच्छी वाली थी, थोड़ी मेहनत करने वाली, वो भी एक प्रियल जैसी लड़की को मनाने के लिए। इंस्टीट्यूट के हॉस्पिटल में तीनों थे। प्रियल को ये जगह सेफ लग रही थी क्योंकि यहाँ निक के आने के चांसेस कम थे। रात हो गई थी तो वो ऐसे टाइम में कम ही आता था। कुछ देर तक तीनों बातें करते रहे, फिर आलिया ने प्रियल को कहा, प्रियल जैन को दवाइयाँ लेनी है, जा जाकर गर्म सूप लेकर आना यार। प्रियल बोली, हाँ जाती हूँ। इतना कहकर उसने अपने बाल संभाले और सूप लेने के लिए खड़ी हो गई। आलिया ने कहा, गर्म होना चाहिए सूप। हाँ हाँ मैडम जरूर, और कुछ? वो मुस्कुराई। आलिया ने नामे सिर हिला दिया। प्रियल बाहर सूप लेने के लिए चली गई, जिसके बाद निक अंदर आया। वो अब अपने चेहरे से खुश दिख रहा था। निक ने आते ही पूछा, प्रियल कहाँ है? हाँ वो, जैन ने कहने की कोशिश की, मगर तभी आलिया उसे बीच में टोकते हुए बोली, क्या आप लोग भी सुबह से हाइड एंड सीख खेल रहे हैं? सूप लेने गई है वो। आलिया ने ये किया तो जैन को अंदर सुकून सा मिला। वो खुद भी बताने वाला था प्रियल यहाँ है, मगर आलिया ने बता दिया तो उसे ये चीज अच्छी ही लगी। निक ने कहा, उसे मत बताना मैं आया था यहाँ पर। निक ये कहकर वहीं पास मौजूद एक केबिन के दरवाजे के पास खड़ा हो गया। उसने अपनी सांसों की आवाज को धीमा कर लिया। वहां छुपकर वो प्रियल के आने का इंतजार करने लगा। तकरीबन 5 मिनट बाद प्रियल सूप लेकर आई। वो अपनी ही चाल में मस्त चल रही थी, मगर जैसे ही वो दरवाजे के पास से गुजरी, निक ने उसे रूम के अंदर खींच लिया, जिसके बाद रूम का डोर बंद हो गया। निक ने प्रियल को खींचकर अपने पास कर लिया और कहा, कब तक छुपोगी मिस शर्मा, आखिर में मैंने आपको पकड़ ही लिया। प्रियल कुछ नहीं बोली। एक तो निक उसके सामने था और एक वो उसकी बाहों में थी। उसके दिल की धड़कन बढ़ गई थी और वो अजीब सी फीलिंग को महसूस कर रही थी। निक ने कहा, अब कुछ बोलो भी, या फिर से छुपने का इरादा है? देखो मैं परेशान हो गया हूँ पूरे दिन से तुम्हें ढूंढ ढूंढ कर। निक को भी समझ में नहीं आ रहा था वो क्या कहे, मगर सुबह से उसने प्रियल को नहीं देखा था तो वो चाहकर भी चुप नहीं रह पा रहा था। प्रियल ने गहरी सांस ली और बोलने के लिए मुंह खोला, मगर वो कुछ बोलती उससे पहले उसके हाथ से सूप छूटकर निक के पैरों पर गिर गया। निक दर्द से छटपटाया और बोला, ओ माय गुडनेस। प्रियल हड़बड़ा गई, आई एम सो सॉरी सर, आपको, आप चलिए डॉक्टर के पास। नहीं मैं डॉक्टर को यहीं बुलाकर लाती हूँ, आपकी चोट लग गई होगी ना, सूप बहुत गर्म था, जल गया होगा। सॉरी सर मैंने जानबूझकर नहीं गिराया। वो निक को लेकर काफी ज्यादा फिक्रमंद हो गई थी। निक ने पहले तो ऐसे रिएक्ट किया जैसे उसे बहुत दर्द हो रहा है, फिर अचानक उसने अपना रिएक्शन बदला और हंसते हुए कहा, तुम ना सच में बच्ची हो, इस ठंडे सूप से मेरा पैर कैसे जलेगा? आलिया ने तुम्हें गर्म सूप लाने के लिए भेजा था या ठंडा? प्रियल बोली, सर आपके पैर, वो जले तो नहीं ना? उसने पूरी मासूमियत से पूछा था, जिसे देखकर निक उसे देखता ही रह गया। वो बहुत ज्यादा क्यूट लग रही थी। निक पहले तो उसे देखता रहा, फिर उसके ध्यान से बाहर आया और कहा, हाँ जला तो नहीं, पर तुमने मेरे कपड़े जरूर खराब कर दिए। मैं साफ कर दूंगी आपके कपड़े, प्रियल मासूमियत से बोली और अपना सिर नीचे झुका लिया। अचानक निक को एहसास हुआ वो दोनों एक दूसरे के काफी क्लोज हैं, जिसकी वजह से उनकी फीलिंग हाई हो रही है। ये देखते ही वो अलग हुआ और बोला, पक्का ना? ओके, कल आ जाना मॉर्निंग में 9 o'clock मेरे घर पर कपड़े साफ करने। उसे एक बार के लिए प्रियल से दूर जाना था। उसकी खुद की दिल की धड़कन उसके कंट्रोल से बाहर हो गई थी। निक जाने के लिए मुड़ा, तभी प्रियल धीरे से बोली, अब क्या मुझसे अपने कपड़े धुलवाएंगे?
निक ये सुनकर रुक गया। हाँ जरूर, अब आपने खराब किए हैं, ऑफर भी किया कि मैं साफ कर दूंगी, तो कल 9 बजे आ जाइएगा, शार्प 9 o'clock मेरे घर पर। उसने जाने अनजाने कही गई अपनी बात को आगे कैरी किया। प्रियल के रिएक्शन ऐसे दिखा रहे थे जैसे उसे काफी बड़ी गलती हो गई थी और वो उसके मजे ले रहा था। प्रियल ने हाँ में सिर हिला दिया, फिर दोनों ही बाहर जाने के लिए मुड़े। प्रियल और निक बाहर जाने वाले होते हैं कि तभी डॉक्टर नील अपने केबिन में आए, जिसने दोनों को साथ में देख लिया। डॉक्टर नील बोले, आप दोनों एक साथ? फिर से? वो काफी मतलब दोनों को एक साथ देख चुके थे। डॉक्टर नील, आपको नॉक करके अंदर आना चाहिए, निक इधर इधर देखता हुआ बोला। दोनों एक दूसरे के काफी क्लोज थे और किसी तीसरे के आ जाने की वजह से उसे अजीब लग रहा था। अच्छा कैप्टन निक, अब क्या मैं अपना ही केबिन नॉक करके आऊं? डॉक्टर ने अपनी आंख तिरछी की। निक दोबारा इधर उधर देखने लगा, फिर उसने अपने होंठ बंद किए और कंधे उठाते हुए कहा, सॉरी डॉक्टर। वहीं प्रियल ने एक बार भी अपनी गर्दन ऊपर नहीं की थी। प्रियल अपने बालों में हाथ फेरा और रूम से जाने लगी। तभी निक ने कहा, प्रियल चलो मेरे साथ, जैन के लिए गर्म सूप लेकर आते हैं। निक को यहाँ से बाहर निकलने का बहाना चाहिए था। अजीबोगरीब कंडीशन में ये कहकर फौरन आगे की ओर चल पड़ा। प्रियल ने हाँ में सिर हिला दिया और दोनों सूप लेने के लिए चली गई। उनके जाने के बाद डॉक्टर निक ने गर्दन हिलाई और मुस्कुराकर अपनी कुर्सी की ओर चले गए। गलियारे में दोनों शांत थे और चुपचाप चल रहे थे। प्रियल रास्ते में सोचते हुए बोली, मैं तो इतना धीरे से बोलती हूँ, पता नहीं उन्हें कैसे सुन जाता है। निक ने काफी बार कम आवाज में भी बोली गई उसकी बातों को सुन लिया था। वहीं निक ने सोचते हुए कहा, पागल, जब मैं तुम्हारी दिल की धड़कनें सुन सकता हूँ तो ये तो फिर भी तुम मुंह से बोलती हो। वो अपनी जेब में हाथ डालकर चल रहा था। मैंने इनके कपड़े भी खराब कर दिए, पर कोई नहीं, कल साफ कर दूंगी। प्रियल अभी भी कपड़ों को लेकर परेशान हो रही थी। जरूरत नहीं। पर क्यों जरूरत नहीं, करने ही पड़ेंगे, मजा आएगा। कई महीनों बाद मैं अपने कपड़े किसी लड़की से धुलवाऊंगा। निक अंदर ही अंदर से खुश हो रहा था। दोनों एक दूसरे के क्लोज आ चुके थे और अब एक दूसरे के साथ होने वाली चीजों की फीलिंग से गुजर रहे थे। इसमें निक को भी मजा आ रहा था और प्रियल को भी। निक ने गरम सूप लिया और फिर लेकर उसे भेज दिया, जबकि फिर खुद वो कपड़े चेंज करने के लिए चला गया।